राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान और इस्कान के संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ओर से आप सबका स्वागत है। इस शिवालय के प्रांगण में 7 दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का साहित्य व्यास देव के द्वारा नारद जी की शिक्षा के अनुसार वेदों की शिक्षा के संपूर्ण होने के बाद भागवत श्रीमद् भागवत रचा गया उसको श्रवण करने के लिए आप सब पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो भागवत सुनने के लिए घर से निकलता है ये संकल्प करके मैं भागवत सुनने जा रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो भागवत सुनने का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को हमारे हृदय में विराजमान करना, ये भागवत का उद्देश्य है। तो बहुत बड़ा यहाँ मोंटाइम्ब्लांस के भक्त संघ जो है उनकी ओर से ये आयोजन किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत शब्द है, भागवत भागवत का मतलब भगवान के समान, भागवत भगवान के समान। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में भागवत के रूप में संसार को प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, प्रकाश रोशनी दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो भागवत श्री कृष्ण के सम है, भागवत है श्री कृष्णेर अंग। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत है श्री कृष्णेर अंग। अंग का मतलब शरीर। भागवत में भागवत एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का क्या अर्थ होता है? ऐसा वृक्ष जो जिसकी जो इच्छा है वो पूरी करता है। भागवत कल्प वृक्ष है और कोई वृक्ष होती है तो उसके डालियां होती है ना, बड़े बड़े डाले होते हैं ना, वृक्ष है ना, यहां देखिए ना, तो उसकी बड़ी बड़ी डालियां होती हैं, फिर छोटी छोटी डालियां होती हैं, फिर पत्ते होते हैं, फिर फूल होते हैं। तो इस कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत के 12 मोटे मोटे स्कंद हैं। पेड़ की जैसे बड़ी बड़ी डालियां होती है ना, ऐसे 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत के। स्कंद का मतलब बहुत, पेड़ का मोटी मोटी डालियां। और 12 स्कंदों के अंदर 335 अध्याय हैं, 335 चैप्टर्स हैं, 18,000 श्लोक हैं। और एक एक श्लोक में प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। श्री कृष्ण है और भागवत है श्री कृष्ण अंग। भागवत श्री भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक एक श्लोक एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण और उसके भक्तों का जो प्रेम का संबंध है उसका दर्शन है। श्री पद्म पुराण में छह अध्यायों में भागवत का महात्म लिखा है। महात्म का मतलब है महिमा, गिलोरी अब श्रीमद भागवतम। आइए इस कथा को सुनते हैं। एक स्थान है तीर्थ स्थान भारतवर्ष में, उसका नाम है नैम शरण्य। नैम शरण्य जब आप भागवत सुनते हैं तो आप कानों से सुनिए, नहीं केवल कानों से मत सुनिए, आप हमारे साथ वहां वहां चलिए जहां भागवत की लीला हो रही है और खड़े होके वहां देखिए, अपने आप को इस कथा के सुनने में तलीन कर दीजिए, संसार भूल जाए और भगवान की लीला कृष्ण कथा लीला का दर्शन करते चलो। तो नैम शरण्य एक तीर्थ स्थान है, ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। वहां एक चक्कर तीर्थ है, भगवान विष्णु का चक्कर। कहां ये भगवान विष्णु विराजते हैं? त्रिवेणी संगम। चलिए कहां? प्रयागराज। प्रयागराज तीर्थों का राजा है, उसको बोलते हैं प्रयागराज, जहां गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, इसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। और जब वहां कुंभ का मेला लगता है तो कई लाख लोग वहां आके स्नान करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मानव इकट्ठे होते हैं कुंभ मेले में। तो त्रिवेणी संगम तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है। वहां वेणी माधव का मंदिर है, श्री चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में दर्शन करने गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिवेणी संगम में दश अश्वमेध घाट है, जहां 10 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, उस घाट के ऊपर श्रीपाद रूपा गोस्वामी को शिक्षा दी थी, तो वो स्थान वहां है। उस त्रिवेणी संगम में वेणी माधव को प्रार्थना करने लगे भृगुवंशी ऋषि सनक आदि ऋषि। एक ऋषि का नाम है सनक ऋषि और आदि उनके साथ 88,000 सब ऊर्ध रेता ब्रह्मचारी ऋषि है। कलयुग शुरू हो चुका है। त्रिवेणी संगम में स्नान करके वेणी माधव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे गोविंद, हमें वो स्थान बताओ जहां बैठकर हम कोई साधना करें, यज्ञ करें, जिससे लोगों को कलयुग दुख न दे। कलयुग की जो तेजी से गति बढ़ रही है, लोग बुरे रास्ते पे जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए? इसको साधु कहते हैं, जो दूसरे के सुख की चिंता कर रहा है। स्वयं तो तपस्या करता है, स्वयं कष्ट भोगता है, लेकिन दूसरे को सुख देता है, उसको साधु कहते हैं। इस दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। एक साधु, जो दुनिया से कुछ नहीं लेते हैं लेकिन सब कुछ दुनिया को देते हैं। अल्प, अल्प का मतलब थोड़ा सा दुनिया से लेना और अधिक दुनिया को देना, ये साधु। जितना लेते हैं उतना देते हैं, ये व्यापारी हैं। जितने पैसे जाके दुकान में दोगा उतने का सामान मिलेगा, ये व्यापारी है। इस दुनिया में बहुत से लोग व्यापारी हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ दुनिया को नहीं देते हैं लेकिन सबको दुख देते हैं केवल। उनको असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। असुर वो है जो किसी को सुख न दे, सारी दुनिया को केवल दुख दे, दे कुछ भी नहीं, सब कुछ सबका लूट ले। तो दुनिया में ज्यादा असुर लोग भरे हुए हैं और व्यापारी लोग भरे हुए हैं। साधु बहुत कम होते हैं। और साधु का कर्तव्य क्या है? दुनिया का दुख देख नहीं सकते हैं। बहुत साधु का हृदय कोमल होता है, निर्मल होता है, वो दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। लोग तो संसार के अंदर सुख मानते हैं कि घर बन गया, गाड़ी आ गई तो बस सुख हो गया। ये सुख नहीं है, ये परेशानी बढ़ती जा रही है। खाया पिया सोया ये सुख है, ये सुख नहीं है। सुख को चाहो सदा तो शरण राम की ले। सुख कहां है? राम के शरण में। सुख का स्रोत श्री राम के चरण है, वो सुख दाता है। सुख संसार में नहीं है, सुख भगवान की भक्ति में। तो ये सनकादि ऋषि वेणी माधव को प्रार्थना की। वेणी माधव ने अपना सुदर्शन चक्कर रवाना किया, बोला जहां ये चक्कर गिरेगा वहां आप अपना अनुष्ठान करके साधन शुरू कीजिए। चक्कर वहां से चला, नैमिषारण्य में आके गिरा और पाताल में चला गया और पानी बाहर आया और चक्कर तीर्थ बन गया। कई बार हम वहां जाके स्नान करके आए हैं चक्कर तीर्थ में, बहुत लोग जाते हैं। उसके बिल्कुल पास में एक और सुंदर तीर्थ स्थान है, उसको कहते हैं मिश्रित तीर्थ। मिश्रित तीर्थ का मतलब सब तीर्थों का पानी उस तीर्थ में इकट्ठा हुआ है। ये आगे आएगा भागवत के छठे सातवें स्कंद में, तब बताएंगे। वहां दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां इंद्र को दी थी वज्र बनाने के लिए, वृत्तासुर को मारने के लिए। तो वहां सारे तीर्थों का आवाहन करके जल को बुला के स्नान किया, उसको मिश्रित तीर्थ कहते हैं। कभी भगवान आपको ऐसी सुविधा दे और भारत जाओ दर्शन करने, तो ये सब तीर्थों को देखना चाहिए। तो नैमिषारण्य में ये सब तीर्थ, ये सब ऋषि आए 88,000 और दीर्घ काल तक यज्ञ शुरू किया। और शाम के वक्त जब यज्ञ से फ्री हो जाते थे तो कथा सुनते थे। और वहां कथा कौन बताता था? सूत गोस्वामी। सूत किसी आदमी का नाम नहीं है, सूता पुराणों की कथा करने वाले, भगवान के गुण गाते हैं उनको सूत बोलते हैं। एक सूत था व्यास देव का शिष्य, वो द्वापर युग की बात है, उसका नाम था रोमहर्षण। उस सूत को बलराम जी ने महाभारत के युद्ध से पहले, वो आसन के ऊपर बैठा था नैमिषारण्य में, बलराम जी आए। ये बलराम जी उस तरफ जगन्नाथ के साथ बलराम जी खड़े, सारे ऋषि उठ के खड़े हो गए। सूत गोस्वामी अपने स्थान से उठा नहीं, उसका नाम रोमहर्षण था। बलराम जी को लगा कि कथा हमारी कर रहे हैं, पूजा हमारी कर रहे हैं, हम आए हैं तो हमारा स्वागत नहीं। तो बलराम जी ने एक घास का तिनका लिया, उसके अंदर मंत्र पढ़ा और सूता के ऊपर ऐसे फोंका और सूता कसदगति हो गई। सब ऋषियों ने कहा हमने इसको आशीर्वाद दिया था कि बहुत समय तक जी हमको कथा सुनाए, अब हमको कथा कौन सुनाएगा? बलराम जी कहते हैं आप कहते हैं तो इसको मैं जीवित कर देता हूं, लेकिन मर्यादा का इसने उल्लंघन किया। सब ऋषि ने कहा आपके हाथों से जिसका उद्धार किया वो, उसको फिर संसार में क्यों लाया जाए? अब आप कृपा कीजिए इसके बेटे के ऊपर आशीर्वाद कीजिए ताकि वो हमको कथा बताए। तो रोमहर्षण के बेटे का नाम है उग्र सर्वा, और भागवत जो सूता बोल रहा है ये उग्र सर्वा है, ये सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है। वो व्यासदेव के शिष्य थे, ये सुखदेव गोस्वामी का शिष्य। एक दिन सूत गोस्वामी वहां पधारे, सब ऋषियों ने कहा आप हमको कथा बताइए। प्रश्न क्या पूछा? नारद जी कभी एक जगह तो टिकते नहीं है, तो उन्होंने भागवत कहां पढ़ा? नारद तो कहीं 3 दिन भी एक जगह नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? ये भी भागवत में लिखा है। दक्ष प्रजापति आएगा आपको बताएंगे, उसने पुत्र उत्पन्न किए संसार को, प्रजापति कहते हैं जो प्रजा की उत्पत्ति करे। जब तो कोई दुनिया में था नहीं, ब्रह्मा जी ने बेटे पैदा किए, बोला तो आप लोग प्रजा को पैदा करो, उसने 10,000 बेटे पैदा किए, नारद ने सबको साधु बना दिया। दोबारा बेटा पैदा किया, दोबारा साधु बना दिया। तब उसको क्रोध आया, उसने बोला नारद तुमको मैं शराब देता हूं, कहीं घर बना के रह नहीं सकता है, घूमते फिरो। नारद ने बोला अच्छा हुआ, कौन घर बना के झंझट पालेगा। तो नारद कहीं एक जगह रुकता नहीं है, तो उसने कथा कहां से सुनी? तब पद्म पुराण का महत्व भागवत का बता रहा है। सूत गोस्वामी कहते हैं एक बार नारद जी इस धरती के ऊपर घूमते हुए विशाला नगरी में बड़े 4 भाई सनकादि कुमारों से मिले। 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी से उत्पन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प किया मेरे बेटे पैदा हो जाएं, और 4 कुमार पैदा हो गए। तो 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है, और श्रीमद् भागवत में 4 कुमारों को भगवान का पहला अवतार माना जाता है। चतुष्ट कुमार भगवान के अवतार हैं, और पहला अवतार है और ज्ञान का अवतार है। और नारद जी भी ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए हैं, वो भक्ति के आचार्य हैं, और नारद भी भगवान के अवतारों के 24 अवतारों में गिना जाता है। 4 कुमार भी भगवान के अवतार हैं पहला, और नारद भी भगवान का अवतार है। दोनों मिले आपस में, सनकादि कुमार ने कहा हे नारद जी आप तो हमेशा गाते आनंद में घूमते हैं, अब आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लगता है, कुछ आपको चिंता है, क्या हो गया? नारद जी कहते हैं सनकादि कुमारों को आपको प्रणाम करता हूं, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैं भारतवर्ष में भ्रमण करने गया, मैं तीर्थ स्थानों में गया, मैं हरिद्वार गया गंगा के किनारे, मैं बद्री का आश्रम हमारे रहने का स्थान है वहां से निकला, हरिद्वार गया, उज्जैन गया, काशी गया, मथुरा गया, द्वारका गया, लेकिन चारों ओर कलयुग ने अपना राज फैला रखा है। तीर्थों के अंदर साधु कम मिलते हैं, बदमाश ज्यादा मिलते हैं। नारद कहता है कलयुग ने चारों ओर अपने पांव फैला रखे हैं, और बहुत से श्लोकों में कलयुग का वर्णन किया है। एक श्लोक बोलते हैं जो देश के अंदर सबसे अच्छी चीज पैदा होती है वो देश के लोगों को कलयुग खाने नहीं देता है, उसको बाहर के देश में भेजी जाती है। जनपदा अटसूला। जनपद कहते हैं एक नगर को, बड़े नगर को। जैसे आपके इतना गन्ना यहां बनता है मॉरिशस में, लेकिन मैंने गन्ने का जूस पीते एक आदमी को नहीं देखा है। और भारत के अंदर हम सिर्फ वृंदावन से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में 5 गिलास जूस पीते हैं गन्ने का, या दिखता भी नहीं, इतना गन्ना है लेकिन पी नहीं सकते। कितना आश्चर्य है इसको बोलते। और कहां जाता है, सब माल चीनी बनेगी बाहर जाएगी, आप सिर्फ आप बनाओ, मेहनत आप करो, खाएगा कोई और। इसको बोलते कल जो अच्छे से अच्छा फल जो बनता है किसी देश में वो एक्सपोर्ट होता है, जो बेकार बचेगा वो कहेंगे आप लोग खाओ। अभी लीची तैयार होगी ना, सब बाहर जाएगी। वो कोई काला दाग वाली होगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, वो कहेंगे आप लोग खाओ। ये कलयुग का पहला दर्शन करा रहे हैं नारद जी। फिर कहते हैं ब्राह्मण वेद सुना, नाम का ब्राह्मण होगा लेकिन वेद के अंदर का एक भी शब्द मालूम नहीं होगा। जनपदा अटशूला, ब्राह्मण वेद शूला, वेद नहीं, शास्त्र नहीं। हम बहुत ब्राह्मणों को देखा, हमको तो हंसी आती है कभी, भाई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो किसी को पकड़ के ले गए शादी कराओ, उसको तो कुछ आता नहीं था, कोई वेद मंत्र पढ़ने तो पोइट्री पढ़ने लगा ना? क्या क्या कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्वाहा। लोग समझते ब्राह्मण ने कह दिया तो चलो काम चल जाएगा, तो वो किसी भी भाषा में कुछ बोल के सुहा बोल दिया, बस लोग खुश हो गए। और तीसरी बात लिखी है माता जू, नारद कहता है स्त्रीय केश शूला, बाल कटी हुई स्त्रियां मिली मेरे को। कलयुग कहता है 12वें स्कंद श्रीमद् भागवत में कहता है पुरुष बड़े बड़े बाल रखेंगे और स्त्रियां बाल कटाएंगी। और लड़के बड़ा बाल रखते हैं ना, अभी पहले बड़ा रखते थे, अभी कुछ ऐसे खड़ा करके बीच में रखते हैं पहाड़ की तरह। पहले जबरदस्ती सुलाते थे, अब सबको खड़ा करते हैं। क्या हो क्या गया इनको, भूत लगते हैं, सही माना में भूत लगते हैं, समझते हम अच्छे हैं। वो समझ रहे हैं हम अच्छे लग रहे हैं और हमको लगते हैं कि ये भूत कहां से आ गया कब्र से उठ के। ये कलयुग, इसको कलयुग कहते हैं, ये कलयुग है। और पाश्चात्य लोगों का ये दर्शन है स्त्रियां विवाहित होकर एक पुरुष के साथ पूरा जीवन नहीं बिताती है। रामायण में लिखा है कि राम जी तो एक पत्नी व्रतधारी था, लेकिन अयोध्या वासी सारे एक पत्नी व्रतधारी थे, एक ही पत्नी के साथ उनका जीवन बीता, पत्नी ने पुरुष के लिए सेवा की और पुरुष ने पत्नी का पालन पोषण किया। लेकिन कलयुग के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, तलाक, एक पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ, एक पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी को लेना, ये आम जाम हो गया है। ये कलयुग का वर्णन नारद कर रहा है। पाश्चात्य देश का तो बुरा हाल है, कभी हमने आपको बताया था अमेरिका के अंदर कब्रिस्तान के अंदर एक साधु गया, अचानक जाते हुए नजर पड़ी एक स्त्री के ऊपर, कब्र थी, उसके ऊपर एक पंखा लेके हवा दे रही थी। साधु ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा किसकी कब्र है, बोला मेरे पति की है। पंखा झेल रही हो, ऐसी तो पतिव्रता हमने कभी भारत में नहीं देखी कि मरने के बाद कब्र के ऊपर पंखा झेल रही है। मां आपको प्रणाम है, वो बोलती ऐसे मत बोलो। बोला नहीं नहीं, ऐसा तो कोई सेवा नहीं करता है, मरने के बाद कब्र के ऊपर भी कोई पंखा करता है, ये तो आप को धन्य है आप। वो बोलती ऐसे मत बोलो। बोला फिर क्या बोलू। बोला हमारे में रवाज है, रवाज समझते हैं ना, हमारी कस्टम है। क्या कस्टम है हमारी, जब तक पति की कब्र नहीं सूखती है तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती हूं, इसलिए पंखा मार रही हूं ताकि जल्दी सूख जाए। ये नारद कह रहा है कलयुग में ये हाल होगा। ये कलयुग का दर्शन नारद जी करा रहे हैं। और फिर नारद जी कहते हैं, घूमते घूमते मैं वृंदावन आया, वृंदावन में मुझे एक बहुत सुंदर लावण्य मधुर नारी दिखाई दी। उसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैंने प्रणाम करके पूछा, मां आप कौन? बोला, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं भक्ति देवी हूं, मैं भक्ति हूं। नारद ने प्रणाम किया। नारद ने कहा, मां आप तो प्रसन्नचित होनी चाहिए, आनंद में आपको होना चाहिए, आप दुखी क्यों हैं? मां कहती है, मैं पैदा हुई द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश किसको कहते हैं? दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य, इनके द्वारा मेरा उत्पत्ति हुई। कर्नाटक में मैं गई, कुछ साधुओं ने मेरा स्वागत किया। महाराष्ट्र में साधुओं ने मेरी सेवा की। गुजरात में गई तो मैं जर्जर होके बूढ़ी हो गई, वहां तो पापी लोग रहते हैं। फिर कहती है, वृंदावन में आई मैं जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दो बेटे हैं, ये दोनों देखो बूढ़े पड़े हैं, आंख भी नहीं खोलते। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मां सुंदरी है, नौजवान है, बेटे बूढ़े हैं, इसलिए मां कहती है मैं दुखी हूं। नारद जी कहते हैं, भक्ति मैया, भगवान श्री कृष्ण ने आपको मुक्ति दासी के रूप में दी, और ये दो बेटे ज्ञान और वैराग्य दिया, और कहा कि संसार में जाकर प्राणियों का, जो मेरे संतान है, भगवान कहते मेरे जो बेटे हैं उनका पोषण करो। आप जिसको चाहो उसको मुक्ति दे सकती हो। लेकिन फिर नारद को भक्ति कहती है, और नारद सुनता है कि जैसे कलयुग आया, मुक्ति तो वापस वैकुंठ चली गई। भक्ति देवी जब तुम बुलाती हो तब वो आती है, अब तो कोई मुक्त हो ही नहीं रहा। यहां पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मॉरिशस के लोग बढ़ रहे हैं ना? हाँ, क्यों क्यों बढ़ रहे हैं? ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। कोई मुक्त होकर भगवान के धाम पर जा नहीं रहा है। जब वो यहां से ऊपर जाएगा भगवान के धाम, तब लोग कम होंगे ना यहां। और नीचे जो बाकी जो पशु योनि में है, वो तो मानव बन रहे हैं अपने टाइम के ऊपर। मानव भगवान के धाम जा नहीं रहा है, इसलिए यहां ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही। यहां पहले डूडू थे, कहां चले गए? उसकी पॉपुलेशन खा गए सारे। डूडू कहां गया? वो पॉपुलेशन समाप्त कर दिया आप लोगों ने। जिसने डूडू को खाया वो डूडू इंसान बन के वापस आया। वो इंसान बनेगा जिसने खाया, उसी को देखा होगा ना। डूडू को जब मारा तो उसने किसको देखा होगा? मारने वाले को देखा ना, तो वो तो वापस आएगा यही मॉरिशस में, मॉरिशस का बनेगा। लेकिन जिसने मारा था वो तो नरक में जाके फिर वापस यहां आएगा ना, कहां जाएगा? तो मुक्ति, कोई मुक्त ही नहीं रो रहा। इसको आसानी से समझना है, ऐसे समझ लो, स्कूल में फोर्थ क्लास में 30 स्टूडेंट है, एग्जाम हुआ, केवल दो पास हुए, कितने बच गए? 28। लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड में 30 के 30 पास हुए, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में नेक्स्ट ईयर में कितने हो जाएंगे? 30 + 28। क्योंकि दूसरे जूनी में 100% रिजल्ट है, केवल मानव की रिजल्ट मुक्ति नहीं हुई तो सारे फेल। और फिर भक्ति देवी कहती है, नारद जी अगर मेरा किसी ने यहां सेवन नहीं किया, मेरी किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। नारद कहा, मैया ऐसे मत करना। मैं नारद आपको वचन देता हूं कि आपके बेटों को जवान वापस करूंगा, और आपका प्रचार घर घर में, जन जन में और वन वन में और लोगों के हृदय तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा नाम नारद है, तो आप भगवान का मैं भक्त हूं तो ये करके दिखाऊंगा। नारद ने क्या किया, कर्म से उसके बेटों को हिलाया, ज्ञान से गीता का पाठ सुनाया, विष्णु सहस्र नाम का पाठ सुनाया, आंखें खोलें बेटे देखें फिर लेट जाएं। नारद ने बोला मेरी सारी शक्ति से ये दो बेटे जवान नहीं हुए। और तब सनक आदि कुमारों को नारद कहता है यही मेरी चिंता है कि मैंने भक्ति को वचन तो दिया है लेकिन मैं उसके बेटों को वापस ठीक कर नहीं पाया हूं। सनक आदि ऋषि कहते हैं नारद आपको मालूम है क्या करना चाहिए, भक्ति के दोनों बेटों को ज्ञान और वैराग को सचेत करने के लिए आप जानते हो क्या करना चाहिए, आपको कैसे भूल गया, चलो हम आपको बताते हैं। कहां चले? बोला हरिद्वार चलो। अब सनक आदि कुमार हरिद्वार आए, गंगा जी के तट पे, कौन से स्थान पे, सप्त ऋषि आश्रम, सात ऋषि रहते थे। अभी आप लोग में बहुत से लोग कभी हरिद्वार गए होंगे, जहां हरिद्वार में अभी स्नान करते हैं ना, ये तो कैनाल अंग्रेज ने बाद में बनाई है। हरिद्वार का मतलब क्या है, हरिद्वार का मतलब क्या है, हरि का मतलब भगवान, कौन भगवान, बद्री नारायण। कहां रहते हैं, बद्रीनाथ में। उधर जाने का दरवाजा कौन सा है, उसको कहते हैं हरिद्वार, हरि के घर जाने का दरवाजा। तो कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार, बोला हर कौन है, बोला केदारनाथ, भगवान भोलेनाथ ऊपर रहता है, उसके घर का दरवाजा है। तो आपस में कुछ कहें हरिद्वार, कुछ कहें हरिद्वार। अंग्रेज ने कहा ये झगड़ा मत करो, हम इसको हड्डी का द्वार बनाते थे, तुम्हारे सब लोगों की हड्डी इसमें डालना लाकर। उन्होंने असली जहां से गंगा बहती थी आनंद घाट, सप्त ऋषि आश्रम, जहां गंगा सात धाराओं में ऋषियों के लिए बट गई थी, वहां से फिर एक धारा को लाए हैं जहां आजकल लोग स्नान करते हैं। तो सप्त ऋषि आश्रम के वहां आनंद घाट के ऊपर सनक आदि कुमारों का ब्रह्मा जी ने पूजन किया, और जैसे ही सनक आदि कुमारों ने भागवत का कथा शुरू किया, अंगिरा ऋषि ऊपर से पधारे, मेधावत आए, वशिष्ठ आए, सारे ब्रह्मांड के ऋषि वहां प्रकट हुए। सनक आदि ऋषि कुछ बताने जा रहे हैं जो बोलते भी नहीं है, तो कोई विशेष बात बताते होंगे। पूरे ब्रह्मांड से ऋषि आके बैठने लगे, कथा शुरू हुई, सबके देखते देखते वहां भक्ति अपने दो बेटों के साथ आ गई और दोनों बेटे जवान। उसी कथा के बीच में सबको आश्चर्य हुआ ये कहां से आ गई, पूछा मां आप कहां से पधारी, बोले भागवत से निकली हूं, भक्ति ही भागवत के अंदर से निकली हूं बोली, और इसको सुनकर मेरे बेटे ठीक हो गए। तो भागवत का ये सनक आदि ऋषि, नारद जी ने बीच में एक स्थान पे जरूर कहा कि मैं बहुत चिंता में हो गया, तो मैं अपने इष्ट देव बद्री नारायण के आश्रम में गया, वहां बैठ के मैंने भगवान बद्री नारायण को प्रार्थना की, उन्होंने कहा तेरी समस्या का समाधान संतों के संग से होगा। अब सनक आदि ऋषियों का संग हो गया तो नारद के इस समस्या का समाधान हो गया। भक्ति फिर कलयुग में लोगों ने भक्ति को और छोड़ दिया, इसलिए भक्ति ने कहा था मैं सात समुद्र पार चली जाऊंगी। भक्ति भारत से श्रीला प्रभुपाद के हृदय में बैठकर भारत को छोड़कर सात समुद्र पार चली गई। और जब प्रभुपाद जी वापस अमेरिका से लौट के भारत में आए तब वापस भारत में भक्ति का प्रचार शुरू हुआ। तो भक्ति ने दोबारा प्रभुपाद के द्वारा इस्कान के अंदर प्रकट होकर पूरे विश्व में प्रचार करने का काम किया। ये भागवत के महात्म्य के श्लोक का अर्थ कुछ महात्माओं ने अपने अनुभव से वृंदावन में प्रभुपाद जी के 100 वर्ष शताब्दी में बताया था कि ये श्लोक भागवत
के महात्म्य का बताता है कि प्रभुपाद के हृदय में भक्ति भारत से वृंदावन से चली गई बाहर, क्योंकि किसी ने भक्ति का आदर नहीं किया भारत में, लेकिन प्रभुपाद ने पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति का प्रचार करके जब वो भक्त गए भारत में, तब भारत के अंदर भक्ति का फिर प्रचार शुरू होने लगा। ये हम एक महात्म बता रहे हैं। दूसरा महात्म भी चार अध्यायों में है। उस महात्म में कथा कर रहा है जो भगवान श्री कृष्ण का सखा है उद्धव, और कथा कर रहा है गोवर्धन के तलहटी में कुसुम सरोवर के पास, जहां उद्धव कुंड है। सुन कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण का परपोत वज्रनाथ, भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्ना, प्रद्युम्ना का बेटा अनिरुद्धा, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाथ, वो कथा सुन रहा है। और कथा कौन सुन रहा है? परीक्षित की माता उत्तरा, जिसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन भी नहीं दिया था, उसके उदर में प्रवेश होकर परीक्षित की रक्षा भी की थी। और सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण की रानियां, और कथा कर रहा था उद्धव। कथा में इतना आनंद था कि प्रहलाद भी वहां पधारे, भोलेनाथ शंकर भी वहां आए, ब्रह्मा जी भी पधारे, और उस कथा के आनंद इंद्र भी आके ढोलक बजाने लगे, नारद मुनि भी वहां कहते मैं भी आ गया उस कथा में। तब परीक्षित को कहा गया कि परीक्षित, कथा शुरू होने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बोला कलयुग चारों ओर से लोगों को सता रहा है, कथा में आके विवधान डालेगा, कथा में डिस्टर्ब करेगा, आप जाके कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करो। परीक्षित कहता है मैं कब कथा सुनूंगा? तब उद्धव कहते हैं ये कथा तो भगवान के परिकरों को सुना रहे हैं, भगवान के जो साथी हैं उनको सुना रहे हैं। किसी ने दुनिया में कथा सुनी तो परीक्षित आपके लिए विशेष कथा पहले भागवत सुनाई जाएगी, लेकिन अब आप जाके कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करो ताकि इस कथा में डिस्टर्बेंस न हो। इसलिए परीक्षित वहां से कथा न सुनकर कलयुग को जीतने के लिए रवाना हो गया। उस कथा के बीच में भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए, सबने श्री कृष्ण का दर्शन किया, और सबको कृष्ण भगवान ने कहा आप बोलिए आपको क्या वरदान चाहिए। सबने कहा आप भागवत में प्रवेश कर जाइए, जहां जहां भागवत की कथा हो वहां आप विराजमान हो जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण का सत्य वचन तथा अस्तु, ऐसे ही होगा। जैसे रामायण की कथा में हनुमान जी आके बैठते हैं, ऐसे भागवत की कथा के अंदर श्री कृष्ण साक्षात आते हैं, ये भागवत में लिखा है। और कथा से भक्ति देवी निकलती है, और पूछा कि कहां बैठोगी भक्ति देवी, कहां बैठना चाहिए? बोला भक्तों के हृदय में बैठो। श्रीमद् भागवत से निकलकर भक्ति भक्तों के हृदय में बैठती है, और नारद जी कहते हैं भक्ति तुम जिसके हृदय में बैठोगी ना, गोलोक से भगवान श्री कृष्ण को खींच के उसके हृदय में तुम को ला सकती हो, तुम्हारे में ये शक्ति है, तुम्हारी ये शक्ति है। तो आप भागवत कथा यहां सुनने आ रहे हैं, आप ये संकल्प करके आओ कि भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण और उसकी भक्ति हमारे हृदय में आए, हमारा जन्म सफल हो जाए। दुनिया के अंदर बाकी सब काम अपने आप होते रहेंगे। यहां सनक आदि ऋषियों ने एक और इतिहास सुनाया, उस इतिहास को कल सुनाएंगे। आज कहते हैं इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये सृष्टि मुझे करने को बोल रहे हो, मैं कैसे अपना साधन करूंगा? तब कहा भागवत का पाठ किया करो। ब्रह्मा जी भागवत का पाठ करते हैं। शंकर जी ने कहा मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, प्रलय जैसा काम। तब शंकर जी भागवत की कथा करते हैं, पार्वती सुनती है। भगवान विष्णु कथा करते हैं, एक महीना लक्ष्मी सुनती है, तीन महीना लक्ष्मी भागवत की कथा करती है। ये भागवत के महात्म ने लिखा है, वही कथा भागवत की का रस है। मानव लोग में भागवत की कथा उसी महात्म में लिखा है। सतोगुण की कथा वो है जिसमें साधु लोगों के हित के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रदान करने के लिए कथा करे। रजोगुण की कथा वो है जिसमें पब्लिसिटी बहुत, खर्चा बहुत, दिखावा बहुत, लेकिन कथा सुनने का भाव न हो। प्रायः आपके यहां तो मैंने इतना नहीं देखा है, लेकिन भारत में भागवत की कथा का बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है, बहुत बड़ा निमाइश होती है, बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है, लेकिन लोगों के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप भाग्यशाली हो के भागवत की कथा सुनने के लिए आ रहे हो। दूसरी कथा का कल आगे से कथा को बढ़ाएंगे, आज भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं। पहले भागवत के महात्म्य का एक श्लोक है और भागवत का अपना एक श्लोक है। भागवत के महात्म्य का एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए, विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमो। भागवत के महात्म में लिखा है श्री कृष्ण कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। या आप अभी दीप दर्शन कर रहे थे भगवान को, उसमें भी लिखा है नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण का रूप सदा रहने वाला है, आनंद का सागर है, ज्ञान का भंडार है। क्या कृपा की भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर, विश्व उत्पत्ति हेतवे, ये संसार में हमको जन्म दिया ताकि हम भगवान की भक्ति करके भगवान को पा सके, नहीं तो पड़े होते कीड़े मकोड़ी की तरह सारी उम्र, तो हमारे को मौका कैसे मिलता। कुछ धर्म का ऐसे मानना है कि एक बार आदमी मर गया तो मर गया, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये श्लोक कहता है विश्व उत्पत्ति हेतवे, भगवान हमको एक जन्म देके मानव का मौका देते हैं। श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा को कथा करके कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मोक्ष का द्वार है, बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है, बार बार मानुष तन पाना बच्चों का खेल नहीं, शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं, जब अच्छे कर्म कठे नहीं होते तब तक मानव शरीर नहीं मिलता है। तो भगवान क्या कृपा हमारे ऊपर की, संसार की सृजन किया ही क्यों, ताकि हमको मौका दिया एक कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं जन्म मृत्यु के। विश्व उत्पत्ति हेतवे क्या करती है ये भागवत, तापत्रय विनाशाय। पाप नहीं कह रहे हैं, पाप का मतलब है पाप, ताप का मतलब पाप के फल को भी नाश कर दे। ये भागवत सारे पाप के फल को बिल्कुल नाश कर देगी, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को सब नमस्कार करते हैं, श्री कृष्ण वयम नमो। हम सब मिलकर, व्यास देव ने अकेले भगवान की प्रार्थना नहीं की है, सबको गोद में बिठाकर साथ लेकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप हमारे सारे ताप और पाप नाश कीजिए, आपने हमको उत्पन्न किया है तो हम आपकी भक्ति करें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 19 अध्याय है, 19 चैप्टर का है, 3 संवाद हैं, 3 मीन्स 3 संवाद मीन्स डायलॉग्स। पहला डायलॉग है बिटवीन सनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी, 3 अध्याय। दूसरा डायलॉग 3 अध्याय का है नारद ऋषि और व्यासदेव, 12 चैप्टर में परीक्षित महाराज की ग्लोरी है कि कैसा भागवत सुनने वाला व्यक्ति था। एक अध्याय में
भागवत सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी की महिमा है। लेकिन पहले तीन श्लोक, पहले अध्याय, पहले स्कंद के श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। मंगलाचरण का अर्थ होता है व्यासदेव अपना काम शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम निर्विघ्न समाप्त हो। दूसरा मंगलाचरण का उद्देश्य है इस भागवत में मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसके अंदर विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। और तीसरा आशीर्वाद देते हैं कि जो भागवत पढ़ेगा श्रुति फल उसको क्या मिलेगा, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, कहने वाले को क्या लाभ होगा। ये तीन श्लोकों में मंगलाचरण है। और पहले श्लोक के अंदर वेदांत सूत्र है, गायत्री मंत्र है, श्रुति है और सृष्टि है, सब एक ही मंत्र में। जन्मादि अस्य यतः, ये जन्मादि अस्य वेदांत सूत्र है। लेकिन तो वहां शब्द लिखा है अथ, यहां अथ नहीं लिखा है। क्यों? इसलिए कि वेदांत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, लेकिन भागवत पढ़ने का अधिकार सबको है। इसलिए वेदांत को भागवत में ऐसे बिठाया व्यास देव ने कि सबका उद्धार हो। और धीमहि परम सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री मंत्र है पहले श्लोक में। लेकिन ऐसे रखा है कि स्त्री भी उसका उच्चारण कर सकती है, नहीं तो वैदिक काल में शिक्षा के अनुसार स्त्री को कभी जनेऊ नहीं डलता है। डलता है कभी जनेऊ स्त्री को? नहीं डलता है ना, पुरुष को होता है ना जनेऊ, मालूम है, देखा है ना, स्त्री को नहीं होता है। क्यों? वेद ये जनेऊ कब डाला जाता है मालूम है? जब गुरु के आश्रम में लड़का जाता है तो उसकी एडमिशन का ये उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। आप स्कूल जाते हैं ना, वो फ्री बस में जाने के लिए कार्ड होता है ना, बच्चे दिखाते हैं ना, है? तो ये वैदिक कार्ड है कि ये गुरु की स्कूल में पढ़ रहा है, ये दिखा के बस में हम किराया नहीं देंगे, बोल देना यहां कि हमारा कार्ड है। इसको आईडी कार्ड बोलते हैं कि गुरु के आश्रम में जाने के समय पहले यज्ञोपवीत, इसको यज्ञ पवित्र बोलते थे। तो स्त्रियों को अधिकार नहीं है, लेकिन यहां भागवत में पहले श्लोक में गायत्री मंत्र वो सबको बोलने का अधिकार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नारद जी ने कहा कि कलयुग के लोगों के उद्धार करने के लिए आप सबको सुविधा हो ऐसी भागवत की रचना करो। और इस भागवत के अंदर पहले श्लोक में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कहकर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। कैसा है ये भगवान? स्वराट, इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई नहीं है, स्वतंत्र है, सब इसके अधीन है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, परम ईश्वर है, ईश्वर नहीं है केवल, ईश्वरों का ईश्वर है। स्वराज है, इंडिपेंडेंट है, सब उसके अधीन है, सबका कारण आदि कारण वो है। अभिज्ञ, सब कुछ जानता है, हम में से हर एक के बारे में सब कुछ जानता है, हमने कौन से जन्म में क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था, सब उसको मालूम है। इसलिए एक आदमी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है, एक आदमी के अंगूठे के निशान दूसरे से नहीं मिलते हैं। क्यों? वो जानता है हर एक को, हर एक की बनावट अलग है इस दुनिया के अंदर, है कि नहीं है? आश्चर्य नहीं लगता है कि एक व्यक्ति सबको जानता है और सबके हृदय में बैठा हुआ है। सर्वस्चाहम हृदय सनिविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, भगवान बोल रहे हैं। जो हमारी दिल में बैठा है वो हमको नहीं जानता है हम क्या कर रहे हैं,
हम समझते हैं कि जब हम कोई गलत काम करते हैं हम समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। अरे वो अंदर बैठा हुआ है परमात्मा, वो कैसे नहीं देखता है? वो ठीक तरह से देख रहा है लेकिन कुछ बोलता नहीं। क्यों? उपदृष्टा अनुमानता, वो केवल ऊपर से देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। किसको बोलता है? जो अपने आप को उसके चरणों में अर्पण करता है उसको रोक देता है गलत काम करने से। गलत काम करने की इच्छा सबके हृदय में आती है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं गलत सोचता नहीं हूं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन गलत काम करने से भगवान भक्तों को बचा लेता है। दूसरे श्लोक में विषय वस्तु लिखा है, क्या है भागवत में? भागवत नित निर्मत्सराणाम सताम, ये जिनका हृदय शुद्ध है उनको भगवत प्रेम प्रदान करने वाला शास्त्र है। निर्मत्सराणाम, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। इस शास्त्र के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है जो संसार के अंदर फंसाने के लिए हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, वेदों के अंदर तो ऐसे मंत्र हैं जिनसे तुम ये यज्ञ करो तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो वापस मर के इधर दुनिया में आओगे तो फंस जाओगे ना। तो इसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आदमी इस दुनिया के बंधन में फंस जाए। वस्तु शिवदम, शिवदम वस्तु है, वास्तवम वस्तुम वास्तवम शिवदम तापत्रय अनुमूलनम। शिवदम का मतलब सबका मंगल करने वाली वस्तु है, इसमें किसी का अमंगल होने वाला नहीं है। और सबके तीनों प्रकार के ताप, कौन से तीन प्रकार के ताप हैं? शरीर से उत्पन्न होने वाले बीमारी रोग, मानसिक चिंताएं, दूसरे लोग जो हमको दुख देते हैं, मच्छर काटता है कि दूसरे हमारे अपने रिश्तेदार हमको परेशान करते हैं, और फिर प्रकृति का कोप, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी ज्यादा बरसात होती है, कभी अर्थक्वेक होती है। ये तीन ताप हैं, उन मूलाय, ये जड़ से निकाल देता है, फ्रॉम रूट अपरूटिंग। महामुनि कृते, ये व्यास देव की कृति है। कब व्यास देव ने ये लिखा? जब पूचार वेद लिख चुका था उसके बाद लिखा, वेदांत सूत्र लिख चुका था उसके बाद लिखा, उपनिषद लिख चुका था उसके बाद लिखा, महाभारत भी लिख चुका था जिसमें भगवत गीता है उसके बाद लिखा, नारद जी के कहने के ऊपर भागवत की रचना की। किम अन्य और किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? भागवत लिखती है, इस एक शास्त्र में सब कुछ है। जो और किसी दुनिया के शास्त्र में मिलेगा वो भागवत में है, और जो कहीं भी नहीं है वो भी इसमें, इसलिए और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इसमें है। अवरुद्धते तत क्षणात्, जैसे ही सुनने के लिए घर से निकलते हो भगवान श्री कृष्ण भागवत सुनने वाले के हृदय में आके एकदम बैठ जाते हैं। कैसा है ये भागवत? गलितम फल नगम निगम कल्पत्रु गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, मतलब पेड़ के अंदर पका हुआ फल है। यहां फल निकाल के आम सब रखते हैं नीचे, फिर उसके अंदर मसाला कुछ डालते हैं, कार्रवाई फिर पकाते हैं ना, ये वैदिक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसको उतारा कैसे है? बोला एक आदमी ने ऊपर से लिया, दूसरे आदमी के हाथ में दिया, दूसरे आदमी के तीसरे आदमी के हाथ में दिया, परंपरा के द्वारा नीचे उतरा है। लेकिन इसको और मीठा किसने किया? सुख मुखाद द्रवितम। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब ये बोला गया तो ये बहुत मीठा हो गया। अमृत द्रवितम, ये फल कैसा है? इसके अंदर ऊपर छिलका भी नहीं है, अंदर इसके अंदर गुठली भी नहीं है, ये तो पीबंती भागवतम, इसको पीना है। ये वैदिक साहित्य का, इसलिए नारद ने जब पूछा दशनक आदि को कहा ये तो वेदों की बात आप बता रहे, बोला हाँ है वेदों की बात, लेकिन वेदों की बात भागवत में पके हुए फल की रूप से है। उदाहरण दिया कि आम के पेड़ के अंदर आम का जूस होता है कि नहीं होता है बताइए, लेकिन आम के पेड़ को चाकू मारोगे तो जूस निकलेगा क्या? आम के पेड़ को काटोगे जूस निकलता है? नहीं निकलेगा ना। आम पकेगा तब आम का जूस मिलेगा ना, है तो पेड़ में है कि नहीं? आम में कहां से जूस आता है? पेड़ से आता है ना, लेकिन पेड़ को काटने से नहीं मिलेगा। गाय के अंदर दूध है कि नहीं है? तो कहीं गाय से गाय को काटेंगे तो दूध निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना, खून निकलेगा। जब उसके स्थल से निकालेंगे तब दूध निकलेगा। तो ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल रस से भरा हुआ भागवत है, वहीं और कहीं से वेद को देख पकड़ोगे तो वहां से रस नहीं मिलेगा। तीन अध्याय तीन श्लोकों में श्रीमत मंगलाचरण करके फिर श्लोक शुरू होता है कि एक बार की बात है, नैम शरण्य में सुखदेव गोस्वामी नैम शरण्य में सूत गोस्वामी आए, सनक आदि ऋषियों ने उनका स्वागत करके आसन देके कहा कि आपने गुरुजनों की सेवा की है, आप हमको कथा बताइए। कलयुग लोगों को बहुत दुख दे रहा है, बहुत समय से हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के धुएं से हमारा रंग अंग काला हो गया है, लेकिन किसी का हृदय पवित्र नहीं हो रहा है, ये भागवत में लिखा है। तब सूत गोस्वामी कहते हैं अभी इसी वक्त मैं आ रहा हूं। कहां से आ रहे हैं महाराज? सुकताल से आ रहा हूं, ये एक और तीर्थ स्थान है जहां पहली बार भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। ये हरिद्वार जाते हुए रास्ते में 28-30 किलोमीटर गंगा के तट के ऊपर स्थान है, उसका नाम है सुकताल। पास में एक गांव है, उसका आज भी नाम है हस्तनापुर, और गंगा के तट के ऊपर एक गांव है, उसको कहते हैं विदुर कुटीर। विदुर जी वहां रहते थे, पास में हस्तनापुर थी। हस्तनापुर से निकल के परीक्षित महाराज यहां आके बैठे थे सुकताल में। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, एक बहुत बड़ा बनियान ट्री है, मेरे ख्याल 500 मीटर से ज्यादा बड़ी होगी। उसके नीचे सुखदेव गोस्वामी बैठकर भागवत की कथा की थी। सूद गोस्वामी कहते हैं मैं अपने गुरुजेव सुखदेव गोस्वामी से अभी ये कथा सुन के आ रहा हूं। मेरे गुरुजी ने मुझे आगे बिठाया और ध्यान से मैंने सुना था, और मेरे आंखों के सामने परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उसकी प्राप्ति हुई है। मैं कलयुग के लोगों के दुख निवारण के लिए आपको भागवत की कथा बताऊंगा। ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, सनक आदि ऋषियों ने 6 क्वेश्चन पूछे। 6 भग बोलते हैं, भगवान का मतलब जिसमें 6 गुण हो। 6 प्रश्नों के द्वारा भगवान की अभिव्यक्ति हुई है, भगवान का दर्शन है पूरी भागवत में। तो कल हम यहां से आगे कथा को शुरू करेंगे, आज की कथा को यहां विराम देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? 58 मिनट हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।